Jai Radha Madhava Gunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Raja Chanaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Gunja Bihari. Jai Radha Madhava Gunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari bo, hari bo, hari bo, hari bo. Ah, hari bo, hari bo, hari bo, hari bo.
अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन. अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छी हो तो वह आधा कार्य पूरा संपन्न हो गया सामान्य से. क्लास कैसी हो रही है? कीर्तन एकदम से हो रही है. Let us thank you, Lord Krishna Prabhu, the loudly ones chanting. Hari Bol! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 30 श्लोक. अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप. श्लोक क्रमांक 6. काशिष्णुना कनक वर्ण विभूषणेन ब्राजत कपोल वदन विलसत किरीटः अष्ट आयुधे अनुचरे मुनिभि सुर इंद्रः आसेवितः गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति. काशिष्णुना कनक वर्ण विभूषणेन ब्राजत कपोल वदनो विलसत किरीटः अष्टायुधैर अनुचरैर मुनिभिः सुरेन्द्रैः आसेवितो गरुड किन्नर गीत कीर्तिः. काशिष्णुना कनक वर्ण विभूषणेन ब्राजत कपोल वदनो विलसत किरीटः अष्टायुधैर अनुचरैर मुनिभिः सुरेन्द्रैः आसेवितो गरुड किन्नर गीत कीर्तिः. काशिष्णुना कनक वर्ण विभूषणेन ब्राजत कपोल वदनो विलसत किरीटः अष्टायुधैर अनुचरैर मुनिभिः सुरेन्द्रैः आसेवितो गरुड किन्नर गीत कीर्तिः. शब्दार्थ काशिष्णुना चमकीले कनक सोना वर्ण रंग के विभूषणेन आभूषणों से ब्राजत चमकते हुए कपोल मस्तक वदन मुख विलसत झिलमिलाता हुआ किरीट मुकुट अष्ट आठ आयुधे आयुधों से अनुचरेह सेवा करने वालों से मुनि भी मुनियों से सुरेंद्र देवताओं से आसेवित सेवित गरुड़ गरुड़ द्वारा किन्नर किन्नर लोक के वासी गीत गाया हुआ कीर्ति ही कीर्ति या महिमा. अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था. यह मुकुट झिलमिला रहा था
और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। तात्पर्य, सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है। ये हैं शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहां पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं। चूंकि भगवान परम नियंता हैं, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। श्री वीर राघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, श्रांग, शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। वे कभी अकेले नहीं रहते, अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग मनुष्य जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं। गीत कीर्ति शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भन्नम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरों श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। आज के इस प्रातःकालीन भागवतम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी उपस्थित भक्तवृंद और सभी एफएम इत्यादि पर सुनने वाले भक्तों के आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, जिससे कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा हम कर सकें। यह अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप, और यह संवाद मैत्रेय मुनि और विदुर मुनि के बीच में चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखकर फिर इस श्लोक के ऊपर चर्चा करके फिर उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे लगाना है इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करें। तो ये कथा जो श्रीमद् भागवतम है वेदव्यास जी द्वारा रचित है, और इसमें जो प्रथम स्कंद है इसमें सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में संवाद शुरू होता है, और उस संवाद के बीच में सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ उसको कोट करते हैं, उसको उद्गत करते हैं दूसरे स्कंद से। तो इस प्रकार एक वार्तालाप के बीच में दूसरे वार्तालाप चल रही है, और तीसरे स्कंद से मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद शुरू होता है, जो कि तीसरा और चौथे स्कंद में उसका वर्णन है। तो विदुर मुनि धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, उसके द्वारा अपमानित किए जाने पर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, और मैत्रेय मुनि से उनकी भेंट हरिद्वार में होती है, और वहां पर यह संवाद चल रहा है मैत्रेय और विदुर संवाद। तो उस संवाद में सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई वहां से शुरू करके फिर स्वयंभू मनु का जो परिवार है उसका वर्णन आता है। तो स्वयंभू मुनि के परिवार का वर्णन बहुत विस्तृत है, तीसरे स्कंद में भी है, और चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज जो स्वयंभू मुनि के पुत्र हैं, उत्तनपाद उनके पुत्र हैं, उनकी कथा का वर्णन आता है। और ध्रुव महाराज की कथा बताने के बाद फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के गुणों का जो यशोगान है वो प्रचेताओं की सभा में किया। तो ये जो वर्णन है ये आता है इस स्कंद के चौथे स्कंद के बारहवें अध्याय में, जब नारद मुनि और ध्रुव महाराज वाली जो कथा है जिसका समापन हो रहा है। तो वहां पर मैत्रेय मुनि बस उतना कहते हैं कि इस प्रकार से नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के यशोगान का वर्णन जो है वो प्रचेताओं की सभा में किया। तो विदुर जी इतने आतुर थे सुनने के लिए, तो उन्होंने तुरंत पूछा ये प्रचेताओं की सभा में कैसे गुणगान हुआ, प्रचेता कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया। तो ये एक महान भक्त का स्वभाव होता है कि वे दूसरे भक्तों ने किस प्रकार से भगवत प्राप्ति की है, किस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त की है, किस प्रकार से अन्य वैष्णवों की सेवा की है, उसको सुनने के लिए अति आतुर रहते हैं। ये भागवतम का सिद्धांत है, कोई भी वैष्णव अन्य वैष्णवों के बारे में सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। और भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि जो भी चरित्र हैं, जिन भी भक्तों का वर्णन हुआ है, उनके दोनों ही पहलू को दिखाया गया है, किस प्रकार से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, और किस प्रकार से भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनमें दोष भी देखे जा सकते हैं। भागवतम जो है वो केवल ऐसे व्यक्तियों की कथा नहीं है जो केवल बचपन से ही महाभागवत भक्त थे, ऐसे भक्तों की कथा है जिन्होंने भक्ति करते करते कई बार या भगवान की योजना से या किसी अन्य प्रकार से गलतियां भी की। लेकिन भागवतम हमें सिखाता है कि किस प्रकार से भक्तों के चरित्र को जब देखना है तो उन्होंने किस प्रकार भगवान की सेवा की है उसको ध्यान में रखकर उसका गुणगान करना है, न कि उनसे जो गलती हुई है उसका गुणगान करना। अभी सोचिए ध्रुव महाराज के ही चरित्र में, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, 6 महीने में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। यहाँ पर ध्रुव महाराज की कथा का प्रदर्शन है हमारे परिक्रमा मार्ग पर। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उनके जो भाई थे उत्तम, उनका वध यक्षों ने कर दिया, तो वो अति रोषित बहुत क्रोध से भर गए और पूरे यक्षों को ही वो समाप्त करना चाहते थे। इतना उनका क्रोध था कि स्वयंभू मनु को साक्षात वहां पर आकर के उनको काउंसलिंग करना पड़ा, समझाना पड़ा कि समझ के। तो अगर देखना चाहे तो हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते, इतना होने के बाद भी, भगवत प्राप्ति करने के बाद भी अगर कोई क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकता है तो क्या लाभ। तो तो हमें समझना चाहिए कि किसी की निंदा करने के लिए, गुणगान करने के लिए कोई बाहरी कारण नहीं होता, ये हमारी मनोस्थिति की बात है। अगर हमारी मनोस्थिति ठीक है तो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति किसी भी समय पर हम उसका गुणगान कर सकते हैं, उसमें गुण देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग और सभी वस्तुएं और सभी स्थितियां भगवान से संबंधित है, इसलिए हर स्थिति में हर चीज में गुण है। मैं एक बार एक प्रवचन सुन रहा था तो उसमें बता रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कि अगर कोई आपका अपमान भी करता है और आपको किसी प्रकार से कष्ट भी देता है, आपके साथ कठोरता का बर्ताव करता है, तब भी आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तो ये बहुत कठिन होता है समझना, ऐसा कैसे? तो वो बोले कि देखिए, महाप्रभु ने हमको आदेश दिया है, तृणादपि सुनिश्चयेन सर्वोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कठोरता से बर्ताव नहीं करते हैं और आपको कष्ट नहीं देते हैं तो आपको नम्र बनने का अवसर नहीं मिलेगा। तो उनको समझना चाहिए कि भगवान के भेजे गए दूत हैं जिससे कि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन कर सकें। तो इस प्रकार से उनको देखना चाहिए कि ये हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करने के लिए अवसर दे रहे हैं, इसलिए उनके प्रति अति कृतज्ञ होना चाहिए। तो सोचिए कि इस स्थिति में हम इतने कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए, लेकिन अगर हम सही दृष्टि से देखें तो उस स्थिति में भी हम कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और विदुर जी स्वयं पूछते हैं कि प्रचेता कौन है, प्रचेताओं का सभा में क्या हुआ। तो ये वर्णन तीसवें अध्याय में आ रहा है, मतलब 18 अध्याय बीच में और है। तो उसके बाद नारद मुनि वर्णन करते हैं किस प्रकार से ध्रुव महाराज के वंशज होते हैं और ध्रुव महाराज के वंशजों में फिर महाराज अंग की कथा आती है। और जब वेण के बारे में बताते हैं कि राजा वेण को ब्राह्मणों ने श्राप दे करके उनकी हत्या कर दी, तो फिर से विदुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये बहुत विशेष गुण है जो हम जिज्ञासा जो कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न है। प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, आध्यात्मिक जिज्ञासा करना, ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेंगे अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा या भगवत जिज्ञासा नहीं करेंगे तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। ये दुनिया में इतनी गतिविधियां होती हैं, इतने कार्यकलाप होते हैं, जिस प्रकार से सागर के अंदर कभी भी जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो कभी रुकती नहीं है। जब से सागर है तब से उसमें लहरें हैं, वेव्स हैं। उसी प्रकार से भौतिक जगत में हमेशा ही कुछ ना कुछ बात करने के लिए टॉपिक रहेंगे। कभी ऐसा मत सोचिए, कभी ऐसा दिन आएगा जब न्यूज़पेपर ब्लैंक हो जाएगा, कुछ समाचार नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसा नया नहीं रहेगा कि आज क्या बात करें। तो भौतिक चर्चा, जब से भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से भौतिक चर्चा चल रही है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ क्या हो रहा है, इसका कोई अंत ना है, ना हुआ है, ना होगा। लेकिन एक वैष्णव का गुण होता है कि वैष्णव उस भौतिक चर्चा को छोड़कर केवल भगवत जिज्ञासा करता है, भगवान के भक्तों के बारे में जिज्ञासा करता है। ऐसी जिज्ञासा करता है जो भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल है, और ऐसी जिज्ञासाएं जिनसे हमारी भक्ति भावना जागृत नहीं होती है, भक्ति भावना में बढ़ोतरी नहीं होती है, ऐसी चीजों से वो दूर रहता है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री गौरणिता की, जय श्री प्रभुपाद की। तो विदुर मुनि जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा ब्रह्म श्राप वेणु को क्यों दिया? ब्राह्मण तो सहनशील होते हैं, सहिष्णुता होते हैं, उन्होंने वेणु को श्राप क्यों दिया? तो उसके बाद फिर मैत्री मुनि अंग महाराज की कथा बताते हैं, किस प्रकार से अंग महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, उसके बाद यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष के माध्यम से जो उनको पायसम या खीर इत्यादि प्राप्त हुआ, उसको ग्रहण करने से उतनी उनकी पत्नी के माध्यम से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन यज्ञ करने के पश्चात भी, यज्ञ पुरुष प्रकट होने के पश्चात भी, यज्ञ का जो फल था उसको भक्षण करने के बाद भी जो पुत्र प्राप्त हुआ वो एकदम क्रूर और दुष्ट था। तो अगर हम कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन जैसा हमारा कर्मफल नियुक्त है वो हमको मिलता है, इतना आप सोचिए कि यज्ञ किया, यज्ञ से यज्ञ पुरुष आए, यज्ञ पुरुष ने जो उनको पायसम दिया उसके माध्यम से उनको पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी पुत्र वेण जैसा नालायक पुत्र था, इतना सब करने के बाद भी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अंग महाराज का मनोभाव कैसा था। अंग महाराज के पास इतने कारण हो सकते थे भगवान को दोष देने के लिए, उन्होंने कहा कि एक जो बुरा पुत्र है वो अच्छे पुत्र से अच्छा है, ऐसा उनका कथन है। क्यों? क्योंकि जो बुरा पुत्र है वो हमको भौतिक जगत से और भौतिक आसक्ति से अनासक्त होने के लिए मदद करता है और उसके कारण हम भगवान की शरण ले सकते हैं। तो भागवतम में ये सिद्धांत हम हर जगह पाएंगे कि कोई भी जो भक्त है जो भगवान से ठीक प्रकार से जुड़ा है, ठीक प्रकार से साधना भक्ति कर रहा है, वो कभी किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को या समय को दोष नहीं देता है। वो दोष कथा निंदा इत्यादि में भाग नहीं लेता है। वो सोचता है कि इस स्थिति में भगवान की कृपा को कैसे समझा जाए। तो अंग महाराज इस प्रकार से सोचते हैं और कहते हैं कि ये भगवान का आयोजन है, इसलिए वो रात्रि में सब राज्य छोड़ करके वन में जाकर के भक्ति करते हैं। और उसके बाद वेणु महाराज की कथा आगे बढ़ती है। उसके बाद प्रथु महाराज का आगमन होता है, प्रथु महाराज की कथा बढ़ती है। उसके बाद फिर उनके वंश आगे बढ़ते बढ़ते फिर प्राचीन भरी की कथा आती है। और प्राचीन भरी के 10 पुत्र होते हैं प्रचेता, और ये प्रचेता प्राचीन भरी कहते हैं कि आप राज्यभार संभालने से पहले जंगल में जाकर के तपस्या कीजिए। पहले जमाने में तपस्या करना, भगवान को प्रसन्न करना, गुरु की सेवा करना, ये एकदम आवश्यक गुण थे कोई भी जिम्मेदारी लेने से पहले, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। उससे पहले ब्रह्मचारी प्रशिक्षण चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन को भगवान की सेवा, गुरु की सेवा के रूप में देखना इतना सरल चीज नहीं है, क्योंकि बहुत एक आसक्ति उसमें आ जाती है। लेकिन गुरु की सेवा करने से, गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ाने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने से, फिर गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी व्यक्ति गुरु और कृष्ण से आसक्ति बनाए रखता है और सही समय पर आने पर उसको छोड़कर वानप्रस्थ में जाता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रचेताओं को आदेश देने के बाद प्रचेता वहां जाते हैं और प्रचेताओं का मनोभाव देखकर वहां पर भगवान शिव उपस्थित होकर उनको रुद्र गीत नाम का मंत्र देते हैं। लंबा गीत है, अगर हमको हरे कृष्ण महामंत्र की जगह अगर रुद्र गीत करना पड़ता तो शायद बहुत सरल नहीं होता, बहुत सारे श्लोक है उसमें। इसलिए क्या कि हमारे आचार्य गुरु ने चैतन्य महाप्रभु ने सबसे सरल मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इति षोडशक नाम नाम कलि कलमश नाशनम। तो रुद्र गीत बहुत लंबा है, पूरा अध्याय है, और उस मंत्र का जब 10 प्रचेता जल के अंदर, अब सोचिए ये कौन सा समय है, सतयुग का समय है, सतयुग का समय है जबकि किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं था। उस समय पर भी विक्षेपित ना हो इसलिए पहाड़ के ऊपर इत्यादि नहीं गए, जल के अंदर गए, क्योंकि जल के अंदर विक्षेपित होने की संभावना और कम रहती है। और 10,000 सालों तक जल के अंदर रह करके उन्होंने तपस्या बढ़ा ली। तो कलयुग में देखिए कि हमारा माध्यम इतना सरल है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, लेकिन जो वातावरण है वो इतना विक्षेपित है कि 16 माला ध्यानपूर्वक करना ये बहुत बड़ी तपस्या। इसी के लिए प्रभुपाद जी ने मंदिरों का निर्माण किया, क्योंकि मंदिर में जब हम आते हैं तो सबसे कम विक्षेपण के साथ हम भक्तिमय क्रियाओं को कर सकते हैं। बाकी किसी भी जगह हम चीजें कर सकते हैं, घर पर भी और जगह भी, लेकिन जो मन का विक्षेपण है, डिस्ट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा रहता है। मंदिर में आने के बाद जो केवल मंदिर के मैनेजर है वो विक्षेपित रहते हैं, बाकी लोग शांति से जब कर सकते हैं क्योंकि उनको चिंता रहती है कि हाँ क्या है, बाकी लोग तो आराम से सरलता से जब कर सकते। तो इस प्रकार से प्रचेता भगवान शिव के बताए गए मार्ग से चलकर अपनी भक्ति साधना करने लगे। और इधर नारद मुनि प्राचीन वरिष्ठ राजा के पास आकर उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। और पिछले करीब 6 अध्यायों से प्राचीन वरिष्ठ की कथा हम सुनते आए हैं, और नारद मुनि के प्रचार का इतना असर था, क्योंकि प्रचार का अर्थ क्या है, अगर हम भक्तिमय ज्ञान को समझे हैं तो क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, उनसे विरक्ति, उनसे वैराग्य और भगवान के प्रति आसक्ति, इसका निर्माण होना चाहिए। ये गुरु की प्रमुख शिक्षा है। गुरु की प्रमुख शिक्षा ये नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसे ठीक से चलेगा, ये सारी चीजें तो गुरु को करनी पड़ती है, जैसे कि आप उनसे ज्ञान लें कम से कम, हम उनसे आसक्त होकर के जो वो कहते हैं वो सुने। लेकिन उनकी वास्तविक शिक्षा है कि किस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाई जाए और भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म की। तो नारद मुनि ने ऐसा प्रचार किया, जो भी कि जितना समय मिला होगा उनके, कि प्राचीन वरिष्ठ बिना उनके पुत्रों को आने का इंतजार किए, बिना विलंब किए तुरंत राज्य कार्य छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है, और जब व्यक्ति ये समझ जाता है तो बिना विलंब किए पूरी दृढ़ता से पूरी तीव्रता से भक्ति योग में लग जाता है। तो प्राचीन परिषद इस प्रकार से राज्य छोड़कर मंत्रियों को देकर चले गए, और उसके बाद अभी जो प्रचेताओं का जो कार्यकलाप है फिर से यहां पर वर्णित होते हैं। तो जब प्रचेता रुद्र गीत का जप करके जल के अंदर जलाशय के अंदर जो तपस्या कर रहे थे, तो 10,000 साल पूरा होने के बाद वहां पर भगवान प्रकट हुए। तो ये जो तो इस प्रकार से विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया और पूछा कि हे बारहस्पत्य, राजा भरिषत के पुत्रों ने जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है? वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु उसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? तो भगवत धाम की प्राप्ति भी की, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति से पहले इस जगत में उन्होंने किस प्रकार भगवान की सेवा की, इसका वर्णन कीजिए। तो ये दो श्लोक विदुर जी बोलते हैं, पहले दो श्लोक, उसके बाद मैत्रेय मुनि के वाच आते हैं। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि राजा प्राचीन मरी के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम हालांकि हमारी प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा जो प्रार्थनाएं अर्पण की है अगर उनको हम दोहराते हैं तो बहुत आसानी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर कहते हैं, प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं का को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुए। तो 10,000 साल जल के अंदर रुद्र गीत का पाठ करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अभी इतना समय नहीं है तपस्या करने के लिए, इतनी शक्ति भी नहीं है, इसलिए सबसे सरल मार्ग है कि असल में ये तपस्याएं सत्ययुग, द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थी, इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है जो प्रचेताओं ने 10,000 साल की तपस्या जल के अंदर करने से प्राप्त किया। चूंकि इस युग के लोग पतित हैं, अतः भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सबसे सरल विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है। हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, का जप करने की ओर भी आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में, और उसके बाद ये दो श्लोक बोलने के बाद फिर भगवान के रूप का वर्णन आता है। क्योंकि भगवान जहां भी प्रकट होते हैं सबसे पहले जो भी उस दृष्टांत का वर्णन कर रहे हैं उसमें भगवान का जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, उसका गुणगान करते हैं। तो भगवान का आगमन वहां पर होता है और कहते हैं, गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीताम्बर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब भक्त लोग तपस्या करते हैं तो भागवतम के प्रत्येक वृत्तांत में पाएंगे कि भगवान वहां प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। और जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के सौंदर्य का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर केवल 3 श्लोकों में उसका वर्णन है, लेकिन आप देखेंगे ध्रुव महाराज के समक्ष जब भगवान प्राचीन कृष्ण गर्भा के रूप में प्रकट होते हैं तो पूरा विस्तार से उनका वर्णन है। ब्रह्मा जी के समक्ष जब भगवान दर्शन देते हैं तो उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो भगवान के रूप का वर्णन भागवतम के प्राय प्रत्येक स्कंद में है, प्रत्येक वृत्तांत में, और उसका बहुत विशेष कारण है। क्योंकि भगवान को एक व्यक्ति मानना, ये हालांकि अभी इस्कॉन में आने के बाद बहुत सरल बात लगती है, लेकिन इतनी सरल बात नहीं। उनको व्यक्ति मानकर उनकी सेवा में जुड़ना, ये योग साधना की पराकाष्ठा। तो एक कर्मकांड स्तर से शुरू करके कर्मकांड होते हुए कर्मयोग आते हुए निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और उनके बीच में अनेक विधियों का पालन करते हुए फिर व्यक्ति अंततो गत्वा यहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो भगवान को व्यक्ति मानकर उनकी सेवा के प्रति आकर्षित होता है। तो भौतिक जगत में जब जीव भगवान को भूलता है तो भौतिक प्रकृति द्वारा जो जो सुंदर रूप का निर्माण किया गया है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उस आकर्षण से भ्रमित होकर के वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। तो जीव का ध्यान भौतिक रूप से हटाकर आध्यात्मिक रूप की ओर आकर्षित करने के लिए भागवतम जैसे शास्त्र में भगवान के रूप का बहुत विस्तार से वर्णन है और बहुत बार वर्णन है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव ए पॉइंट होम। जो बार बार किसी चीज को बोलना या बार बार किसी चीज का वर्णन करना ये बहुत आवश्यक है जिससे कि वो हमारे मन में हमारे हृदय में उतर सके। तो इसीलिए ये बारंबार भगवान के रूप का विस्तार से वर्णन होता है जिससे कि हम कुछ तो उसके बारे में मनन कर सके। क्यों? क्योंकि मन के अंदर जो विषय वस्तुएं हैं वो बहुत गहराई में बैठी रहती है। करोड़ों जन्मों से भौतिक जीवन में रहने के कारण अभी इंद्रिय तृप्ति के बारे में भौतिक चीजों के बारे में विचार नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक हो गया। हमारा जो स्वभाव है वही विकृत हो गया। इंद्रिय तृप्ति का स्वभाव कुछ सोचना नहीं पड़ता। अगर हम जाते हैं मान लीजिए भक्त बनने के बाद भी और जो चीज़ हमको अच्छी लगती है तो तुरंत हम सोचते हैं कि ये दीजिए और दीजिए और दीजिए। हम कभी नहीं सोचते कि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है बाद वाले व्यक्ति को या वैष्णव को नहीं मिलेगा। नहीं, वो विचार नहीं आता है वैष्णव धर्म के पालन करने के बाद भी। अभी हम कभी बस की सीट पर भी बैठते हैं यात्रा वगैरह में तो तुरंत मन में विचार आता है कि हम कहाँ बैठे जिससे कि हमको सबसे कम असुविधा हो, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अपने बारे में चिंता करना, अपने शरीर के बारे में चिंता करना और भौतिक चीज़ों से आकर्षित होना ये स्वाभाविक स्थिति है जीव की। ये बद्ध जीव की स्वाभाविक स्थिति है, इसके लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भगवान के प्रति आकर्षित होना, भगवान के सुख की चिंता करना, गुरु के सुख की चिंता करना, वैष्णवों के सुख की चिंता करना, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये स्वाभाविक नहीं होगा। ये भक्तिमय क्रिया करते करते भी स्वाभाविक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति इतनी बलशाली है कि आध्यात्मिक क्रियाओं को भी मैकेनिकल बना सकते हैं, मैकेनिकल पता नहीं यांत्रिक रूप से कर सकते हैं। यानी कि हर दिन हम दर्शन ले सकते हैं, हर दिन दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, वैष्णवों को प्रणाम कर सकते हैं, हर दिन चरणामृत ले सकते हैं, लेकिन सारा कार्यकलाप हम यांत्रिक रूप से कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन मैकेनिकली। इतना ये जो भौतिक चेतना है इतनी बलशाली है कि आध्यात्मिक क्रियाएं जिनसे हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है इन क्रियाओं को भी हम यांत्रिक रूप से कर सकते हैं, जिसके कारण क्रिया करते करते भी हमारा स्वभाव बदलेगा नहीं। तो इसको समझाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा बताते थे कि एक बार एक गांव से बारात दूसरे गांव जाने वाले थे। पहले क्योंकि बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं तो वे लोग सब नाव में आकर के बैठ गए और बोले कि अभी हमको अगले गांव में जाना है, कल सुबह का मुहूर्त है, कार्यक्रम है, तो आप लेकर के चलिए। तो नाविक ने उनको पूरा भरोसा दिया कि आप बस बैठ जाइए, आप विश्राम कीजिए और मैं रात भर नाव चला करके आपको सुबह आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दूंगा। तो नाविक पूरा रात भर नाव चलाता रहा, नाव चला रहा है। सुबह उठने के बाद देखते हैं कि अरे ये तो गांव हमारे गांव जैसा ही है हमारा। तो वो देखने लगे और देखने के बाद उनको पता चला कि वो जहां थे वहीं पर है। तो उन्होंने नाविक को डांटना शुरू किया, आपने हमको कहा था आप सुबह हमको वहां पहुंचा देंगे और आप अभी हम जहां थे वहीं पर हैं। नाविक बोला कि मैं पूरी मेहनत से पूरी रात बिना सोए नाव चलाया हूं, देखिए मुझे पूरा पसीना आया हुआ है, मैं रात को एक बार भी सोया नहीं, आपको चाहिए तो सीसीटीवी में देख सकते हैं। तो नाविक ऐसा बोला, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे, नाव का चप्पू चल रहा है और पूरा मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी वे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे। तो फिर देखा लोगों ने कि नाव तो चलाने का प्रयास कर रहा है और नाव चला भी रहा है, चप्पू चला भी रहा है, लेकिन जो नीचे जो लंगर है, एंकर है, उसको उसने उठाया नहीं और उसके कारण जो नाव जहां थी वहीं पर रही। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये उदाहरण देते थे कि उसी प्रकार से अगर हम भक्तिमय क्रियाएं कर रहे हैं लेकिन वैष्णवों के संग से प्रभावित होकर के, शास्त्रों के ज्ञान से, गुरु के आदेश से, अगर हम हमारी जो भौतिक आसक्ति है या जो भौतिक स्वभाव है अगर उसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भक्तिमय कार्य करते करते, यांत्रिक रूप से करते करते भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। और ये जो लंगर उठाने का काम है, एंकर उठाने का कार्य है, ये व्यक्ति को स्वयं ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको नहीं कर सकता है उसके लिए। जो अपनी नाव जो हम चला रहे हैं, जैसे हमें अपना जब हमें स्वयं ही करना, कोई दूसरा हमारे लिए सोलह माला नहीं कर सकता। हमको चार नियम का पालन हमको ही करना है, दूसरा नहीं कह सकता है कि हम चार नियम का पालन करेंगे इनके लिए। इसीलिए हम व्यक्तिगत रूप से गुरु के सामने वचन देते हैं, मैं सोलह माला हर दिन करूंगा, चार नियम का पालन करूंगा और दसानुदस बनकर सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से हमारी चेतना को सुधारना, हमारे जो स्वभाव को बदलना, ये हमारा ही कर्तव्य है। और इसमें सारे जो गुरु है, साधु है, शास्त्र है, ये हमारी सहायता के लिए है, लेकिन हमारे बिहाफ पर, हमारे अतिरिक्त ये कार्य हमारे लिए और कोई नहीं कर सकता, ये स्वयं हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान के, हाँ, सुंदर रूप का वर्णन क्यों आता है, जैसे कि बार बार हम उसको सुनकर भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, भौतिक आकर्षण छोड़ करके भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाए। इसके लिए भगवान अनेक रूपों में आते हैं, और सबसे विशेष रूप से भगवान अपना संग देने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए विग्रह रूप में, अर्च विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि विग्रह की सेवा किए बिना भौतिक आसक्ति से ऊपर उठना प्राय असंभव है। सजीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो भौतिक आसक्तियां हैं और जो हमारी गलत आदतें हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए अर्च विग्रह की सेवा करना परम आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसको उनके शुरुआती दिनों में भी, जबकि ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं था, 1967 में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में की, कि ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं था कि कैसे ब्राह्मण क्या होते हैं, कैसे भोग बनाना है, कैसे पूजा इत्यादि करनी है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको अर्च विग्रह की सेवा में संलग्न किया। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम संबंध बनाते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम खाते पीते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उनके साथ हमारी आसक्ति बनना स्वाभाविक हो जाती है। देखिए, भरत महाराज हिरण के प्रति इतने आसक्त क्यों हो गए, उसका कारण बताया जाता है कि जिस प्रकार से माता पिता एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, उसके साथ शयन करते हैं, तो ये सारी गतिविधियां करने के कारण उनका प्रेम बढ़ जाता है। क्योंकि हर सेवा के लिए क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये जब सेक्रीफाइस करते हैं बच्चे के प्रति, तब बच्चे के प्रति बहुत प्रगाढ़ आसक्ति बन जाती है, उसके प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम बन जाता है भौतिक स्तर पर। भरत महाराज ने यही सारी चीजें की हिरण के साथ, हिरण के बच्चे के साथ, तो उनकी आसक्ति बन गई हिरण के बच्चे के साथ। और भगवान अर्च वगैरह के रूप में आकर के यही सब सेवा करने का अवसर अपने भक्तों को देते हैं, और इसीलिए भक्त लोग ये सेवा करते करते इतना दृढ़ता से भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं कि अगर सेवा नहीं मिले तो रोने लगते हैं। सेवा से विरह करना, मतलब सेवा नहीं मिलना, ये उनके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाता है। तो अगर भौतिक आसक्ति को छोड़ना है तो अर्च विग्रह के साथ संबंध बनाना, सेवा करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा भौतिक आसक्ति और भौतिक संबंधों से विरक्ति लेकर के आना इतना सरल नहीं है। तो भगवान के रूप का वर्णन किया जाता है जिससे कि जो हमारा आकर्षण है भौतिक रूप इत्यादि के प्रति वो कम हो सके, हम ये समझ सके कि ये नश्वर चीजें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन भगवान का रूप शाश्वत है, भगवान का रूप और सौंदर्य दिव्य है, और बाकी जो हम चीजें देखते हैं वो क्षणिक है, वो थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम जो हमारा सेमिनार है उसमें एक राधेश्यामपुरम एक सेमिनार बनाया है, तो उसमें एक स्लाइड आता है जिसमें आता है तब और अब, तो उसमें जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं उनका दिखाते हैं कि 1960-70 में कैसे थे वो और अभी उनका कैसा है। तो उसको देखने से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक सौंदर्य है ये क्षणिक है। तो कई सारे लोगों का उन्होंने फोटो तब का और अब का फोटो लगाया है जिससे कि समझ सके कि ये जो भौतिक सौंदर्य नाशवान है, लेकिन भगवान का जो सौंदर्य है वो शाश्वत है। और भगवान विशेष रूप से अपने सौंदर्य से जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और अपने भक्त वात्सल्यता से, जो भक्तों के प्रति उनका प्रेम है, उससे भक्तों को और जीवों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करना और भगवान की लीला कथा सुनना ये बहुत ही आवश्यक है अगर हमको भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ रूप से स्थापित करना है। तो आज के श्लोक में मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था तथा उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के आठ भुजाएं थी, तो वहां पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अधिकतर भगवान चार भुजाओं के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन ये भगवान की इच्छा है, कितने भी भुजाएं प्रकट कर सकते हैं चार भुजाएं, आठ भुजाएं, और चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, और यहां पर कहते हैं आठ भुजाओं आयुध थे। तो क्योंकि भगवान परम नियंत्रण करता है, इसलिए उनके हाथ में जो भी चीज है उसको आयुध भी माना जा सकता है, उसके माध्यम से वे नियंत्रण कर सकते हैं। इसीलिए जो शंख है और पद्म है उसको भी आयुध के रूप में उसकी गणना की गई है। और उसके बाद कहते हैं कि वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे, ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। तो भगवान कभी अकेले नहीं होते, तो ये बहुत विशेष चीज है कि प्रभुपाद जी ने उनके गुरु को प्रसन्न किया और उनके गुरु ने कहा कि इन्होंने मेरा मनोभाव समझ लिया है। जब उन्होंने लिखा एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाओ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाओ हैज रिमूव्ड, जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज समझ गए कि प्रभुपाद ने समझ लिया कि जो परम सत्य है वो एक व्यक्ति है और जो निर्विशेषवादी इत्यादि हैं वे सब भ्रमित है, वो सत्य नहीं है। तो इस तथ्य को समझ करके श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने घोषित किया कि अभय चरण ने मेरे हृदय की बात जान ली। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में मायावाद व्याप्त है, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्वयं अपनी प्रणति मंत्र लिखा, जिसमें लिखा कि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारित। इस भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रमुख शिष्य हैं। सारस्वते देवे, सरस्वती देवे नहीं है, अगर आप ठीक से उसका विश्लेषण पढ़ेंगे तो सारस्वते देवे है, मतलब सरस्वती जी के शिष्य सारस्वते। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण नहीं, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार किया है। और किस प्रकार से? निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी मायावादी इत्यादि और शून्यवादी बौद्ध इत्यादि, पाश्चात्य देश तारणे, जो पाश्चात्य देशों में इतना व्याप्त था, आज तो पाश्चात्य क्या पूर्ववर्ती देशों में व्याप्त है, लेकिन पाश्चात्य देशों में महाप्रभु के संदेश का प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने अपना प्रणति मंत्र स्वयं लिखा, जिससे कि उनका जो वैष्णव जगत में जो योगदान है वो सदैव के लिए जाना जाए कि ये उनका विशेष योगदान है, कि निर्विशेषवाद और शून्यवाद को हटा करके जो भगवान एक व्यक्ति हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा संवैधानिक, आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, 70 साल हो गए। तो संविधान वो है, वो टेम्पररी संविधान है, वास्तविक संविधान नहीं है। हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये वास्तविक संवैधानिक स्थिति। तो आज के दिन हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हम हमारी संवैधानिक स्थिति के अनुसार ही कार्य करेंगे, बाकी टेम्पररी डेजिग्नेशन, वास्तविक संवैधानिक स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने भगवान की व्यक्तिगत सेवा के ऊपर, व्यक्ति भगवान को व्यक्ति मानकर उनकी सेवा से जुड़ने के ऊपर परम बल दिया है। प्रभुपाद जी के प्रत्येक लेक्चर में आप पाएंगे कि भगवान एक व्यक्ति है, उनकी सेवा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने ज्यादा सामाजिक स्थिति है, ये भौतिक शांति और सुख प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, ये भौतिक समस्याओं को सुलझाने का मार्ग नहीं है, ये भाव है, सेवा भाव है उससे। तो कभी कभी सेवा के लिए अगर हमको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती है तो मन बहुत विचलित हो जाता है, लेकिन ये सेवा की सही जानकारी नहीं है, क्योंकि सेवा वास्तव में मन से होती है। इसीलिए अगर आप भक्तिमय शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, मन मनाभव मत भक्तो। अगर मन भगवान की सेवा में नहीं है, अगर मन के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, तो बाहरी रूप से कुछ कार्य भी किया जाए और बहुत उत्तम चीज भी भगवान को अर्पित की जाए, भगवान स्वीकार नहीं करते। भजन में भी आता है ना, दुर्योधन को भोग न खायो सुखो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया, 56 भोग 64 व्यंजन वो नहीं खाया, लेकिन विदुर जी के घर जाकर के रूखा साग खाया या केले के छिलके खाए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर वो भावना है मन के अंदर तो बाकी कितनी भी सुविधाएं कम हो या ज्यादा हो उससे अंतर नहीं आता। अगर मन के अंदर भगवान को प्रसन्न करने की भावना है तो सेवा के लिए अगर कुछ उपयुक्त सामग्री नहीं है तब भी हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सेवा के लिए सामग्री ठीक है लेकिन भावना बहुत महत्वपूर्ण है। भावना नहीं है तो केवल बाहरी रूप से हम भगवान को कुछ भी अर्पण करें भगवान स्वीकार नहीं करते। भावना ठीक है तो उत्तम वस्तु नहीं है लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम वो भी करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, तो भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ती एक तुलसी का जल दिया तो भी चलेगा। पत्रम पुष्पम, फूलों का हार छोड़िए, फूलों का हार हो श्रृंगार हो उसको छोड़ दीजिए, एक पुष्प भी अगर प्रेम से कोई अर्पण करता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं है तो आप बाहर जाकर के देखिए, इतने सारे डेकोरेटर है, इतना सारा फूल का डेकोरेशन इत्यादि करते हैं, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। प्रेम महत्वपूर्ण है, सेवा भावना महत्वपूर्ण है। सेवा भावना के साथ छोटा किया जाए बड़ा किया जाए सब स्वीकार करते हैं, लेकिन सेवा भावना नहीं है तो अत्यंत विशाल चीज भी की जाए, हमारी स्थिति हमारे दृष्टिकोण से बहुत सुंदर चीज हो, बाकी लोग बोले ये बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान उस दृष्टि से नहीं देखते। भगवान उसको भाव की दृष्टि से देखते हैं, उसके पीछे भाव क्या है। तो भगवत प्रीति अर्थम, ये बहुत आवश्यक है कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए चीज की जाए। क्योंकि कभी कभी सेवा करते करते भी हमको सेवा अभिमान हो जाता है कि ये सेवा हम ही कर सकते हैं, ये सेवा हम ही सबसे अच्छे रूप से कर सकते हैं, और कोई इस सेवा को ठीक से नहीं कर सकता है। तो ये सेवा अभिमान भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। भक्त का स्वरूप है दास अभिमान। भक्त सोचता है कि मैं दास हूं भगवान का, जो सेवा मुझे दी जाएगी वो सेवा मैं जितना अच्छे से कर सकता हूं करूंगा। मुझसे सेवा नहीं, सेवा का स्वरूप बदल सकता है। आज हो सकता है एक सेवा बताई जाए, कल को हो सकता है दूसरी सेवा बताई जाए, सेवा बदल सकती है, लेकिन मेरा जो दासता का गुण है कि मैं भगवान का दास हूं, वो मेरी संवैधानिक स्थिति है। वो क्या है? मेरी संवैधानिक स्थिति है। चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई तांदिर दास रणदास, ये अद्वैताचार्य कहते हैं। और राजा प्रताप रुद्र क्या कहते हैं? राजा कहे आमी तुमर दासेर अनुदास, भ्रत्यर भ्रत्य करो ए मोर आस। तो आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में पाएंगे कि सेवा के प्रति तो आसक्ति है, लेकिन सेवा से ज्यादा दास्यता के प्रति आसक्ति है। दास अभिमान होना चाहिए, दास भाव के ऊपर अभिमान, कि हम भगवान के दास हैं, हम जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। क्या करना है, हो सकता है इसमें स्थिति के अनुसार कुछ बदल करना पड़े, लेकिन हम भगवान के दास हैं ये स्थिति नहीं बदल सकती है। दास होकर के कौन सी सेवा करेंगे ये स्थिति बदल सकती है। सेवा की स्थिति बदल सकती है, लेकिन दास्यता की स्थिति नहीं बदल सकती है। इसीलिए दास अभिमान होना चाहिए। और इसीलिए जो सेवा की तीसरी स्थिति है वो है भगवत कैंकर्य रूपम। अगर हम भगवान का अपने को स्वयं को दास नहीं मानते हैं तो जो भी करते हैं वो सेवा नहीं मानी जाती है। उसका हमको अज्ञा स्वीकृति प्राप्त होती है, उससे हमको थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन अगर हम स्वयं को भगवान का दास नहीं मानते हैं, और अगर भगवान को दास मानते हैं तो सेवा से कोई रिजाइन नहीं कर सकता है, कोई ऐसा साहस नहीं कर सकता कि मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं ये सेवा छोड़ दूंगा, कल से ये सेवा किसी और को दे दो, ऐसा कहना इसका अर्थ है कि हम भक्ति के तत्व को नहीं समझे। भगवत कैंकर्य रूपम, ये हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम भगवान के किंकर हैं, हम भगवान के दासानुदास हैं। तो जब ये तीनों स्थिति मिलती है, गुरोर आज्ञा, भगवत प्रीति अर्थम और भगवत कैंकर्यम, जब ये तीन स्थिति मिलती है तब उस कार्य को, जो भक्तिमय कार्य है, जो भगवत कार्य है, उस कार्य को सेवा कहा जाता है। और उस सेवा के, उस सेवा का स्वभाव, उस सेवा का जो जो फल है, उस सेवा के फल के रूप में हमें भौतिक चीजों से विरक्ति हो जाती है और भगवान के प्रति, भगवान के सुख के प्रति, भगवान की प्रसन्नता के प्रति आसक्ति होती है। देखिए, भगवान के रूप का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना बहुत रूप से की जा सकती है, लेकिन भक्त केवल भगवान के रूप से आकर्षित नहीं होता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो प्रयास करता है। इसलिए हमारे तो आचार्यगण क्या कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वॉन्ट टू सी। भगवान को देखना हमारा अंतिम परम उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भगवान को तो बहुत लोग देखते हैं। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, दुर्योधन ने भी देखा, इतना सब लोगों ने देखा, रावण ने भी देखा, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान की प्रसन्नता के प्रति जो भाव है वो सेवा करने से उत्पन्न होता है। और सेवा का अर्थ है कि ये तीन चीजें हो, गुरु आज्ञा हो, भगवत प्रीति अर्थम हो और भगवत कैंकर्य रूपम हो। और हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि ये तीन चीजें हम कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से हम भक्ति में कार्य करें इस परिस्थिति में, जिससे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाए। अन्यथा नाव चलाने के बाद, चरणामृत लेने के बाद, जप करने के बाद और दंडवत डालने के बाद और फूल अर्पण करने के बाद और बाकी फेस्टिवल सेवा करने के बाद भी अगर प्रगति नहीं हो रही है तो सोचना चाहिए कि हमारा जो लंगर है, एंकर है, वो अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक हम ठीक प्रकार से जो भौतिक जो आसक्ति है उसको छोड़कर भगवान की ठीक प्रकार से सेवा नहीं करें। अन्यथा भगवान की सेवा में बहुत शक्ति है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, एक बार भी कोई व्यक्ति छोटी सी भी सेवा करता है उसका कितना बड़ा लाभ उसको मिलता है। तो हम लोग तो पूरा सेवा के आंदोलन में हैं, दिन रात सेवा ही कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है इसका वर्णन बहुत विस्तार से किया जाता है, भगवान के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, जिससे कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि भगवान व्यक्ति है और उनके सुख की कामना हम करें, उनके सुख की कामना करेंगे जब हमारे सुख की कामना से हम दूर जा सकते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ा कर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। किन्नर लोक के वासी होते हैं हमारे जैसे, मनुष्य शरीर जैसे ही, लेकिन उनके दो पंख भी होते हैं एक्स्ट्रा, और उन पंखों का उपयोग करके वो उड़ सकते हैं। ये किन्नर लोक के वासी होते हैं, और किन्नर लोक के वासी बहुत सुंदरता से भगवान का गुणगान भी करते हैं, तो गरुड़ जी की तुलना उनसे की जा रही है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये तो किन्नर लोक के लोग पंखों का उपयोग करके उड़ते हैं, लेकिन सिद्ध लोक के जो जो पुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, सिद्ध लोक के व्यक्ति बिना पंखों का उपयोग किए केवल मन में कल्पना करने मात्र से, मन में सोचने मात्र से सदैव विचरण कर सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं बहुत सुंदर से कि इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं, यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। तो भगवान की सृष्टि का जो सौंदर्य है, इसको कहते हैं ना कि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, इंग्लिश में कहते हैं, जो विविधता है वही जो आनंद की माता के समान। तो जो एक इमेच्योर अगर कोई भक्त है तो वो विविधता को स्वीकार नहीं कर पाता, विविधता को समझ नहीं पाता, वो सोचता है कि हर चीज एक जैसी होनी चाहिए, हर भक्त एक जैसा होना चाहिए, हर भक्त को एक जैसा कार्य करना चाहिए, हर सेवा एक जैसी होनी चाहिए, हर सेवा का जो फल है वो एक प्रकार जैसा होना चाहिए। विविधता को स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन जाता है, वो अनेक प्रकार के भक्तों को देखता है, अनेक प्रकार की सेवाओं को देखता है, तो वो भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित होने के बाद क्या करते हैं कि फिर आपस में चर्चा करने लगते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है, कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, किस सेवा को करने से क्या लाभ मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा स्तुति होगी या ज़्यादा उसको हमको सराहना होगी। तो ये सारे अपरिपक्वता के लक्षण हैं। जो परिपक्व भक्त है वो समझता है कि भगवान की सृष्टि में विविधता की परिपूर्णता है, हर जो आत्मा है वो विविध है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते, और भगवान हरेक की जो विशेषता है, हरेक को कुछ विशेषता दी है, और उस विशेषता का आस्वादन व्यक्तिगत रूप से करता है। भगवान के पास करोड़ों गाय हैं, उनके करोड़ों गोप हैं, करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन हरेक के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप है कि हरेक के साथ वह व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हैं। मधुमंगल के साथ जैसा उनका स्वभाव है वैसा इस तो कृष्ण के साथ नहीं है, जैसा श्रीदामा के साथ है वैसा अर्जुन गोप के साथ नहीं है, हरेक के साथ अलग अलग है। जैसा उनका व्यवहार राधा रानी के साथ है वैसा जो क्या नाम है चंद्रावली उसके साथ नहीं, ललिता के साथ जैसा उनका व्यवहार है वैसा विशाखा के साथ नहीं। तो ये मायावाद का लक्षण होता है, जब हम चाहते हैं कि एक ही जैसा सब होना चाहिए, सब भक्त एक जैसे होने चाहिए, सब चीज एक जैसी होने चाहिए, सब कुछ एक जैसा, मतलब क्योंकि वैष्णवता में विविधता है, हर वैष्णव एक अपने आप में एक एकदम यूनिक पर्सनैलिटी है, एकदम विशेष व्यक्ति है, और वो किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर रहा है इसको हम दूर से नहीं समझ सकते, वो किस प्रकार का भाव उसके मन के अंदर है नहीं समझ सकते। इसलिए कार्यकलापों के आधार पर अगर हम वैष्णवों की निंदा कर दें, अगर हम वैष्णवों के बारे में चर्चा करें, तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि कार्यकलाप भ्रमित कर सकते हैं। आप पूतना का कार्यकलाप देखते थे तो कभी कोई उसको सोचता था कि ये आध्यात्मिक जगत में जाकर के धात्री बनेगी। हाँ, वृत्तासुर का अगर कोई कार्यकलाप देखता था तो कोई सोच सकता है कि वृत्तासुर इतने बड़े महान भक्त हो सकते हैं। अजामिल का रिकॉर्ड देख करके जब यमदूत नहीं समझ पाए तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे। जगाए मजाए का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके कोई सोच सकता है कि इनको इतनी कृपा प्राप्त होगी। तो जो कार्यकलाप देख करके अगर हम विश्लेषण करें अनुमान प्रमाण से कि ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हो सकता है, और इसके कारण अगर हम किसी वैष्णव के चरित्र की चर्चा करें, तो ये हमारे भक्ति के लिए बहुत खतरनाक चीज है। ये अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण नहीं है। अनुमान लगाना कि ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, और बाकी लोगों से इसके बारे में चर्चा करना, ये वैष्णव समाज के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। वैष्णव समाज में केवल भगवान के यशोगान, भगवान की कीर्ति का गुणगान होता है, और अगर भक्तों के बारे में चर्चा करना है तो उसके लिए अधिकार चाहिए। किसके पास अधिकार है? जो उस व्यक्ति का सच्चा हितैषी है वो चर्चा कर सकता है। जैसे कि हमें अगर कोई बीमारी हुई है तो बाकी लोग उसको ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो डॉक्टर योग्य है वो जा करके उसको ठीक कर सकता है, वो उसकी चर्चा कर सकता है, वो हमको दवाई बता सकता है। लेकिन सामान्य जन, सामान्य समाज का ये कर्तव्य नहीं है कि किसी भी प्रकार के बारे में वैष्णवों के बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि हर वैष्णव भगवान को और प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। जो भी जो सेवा करते हैं, कोई छोटी सी भी सेवा करे, सही मनोभाव से नहीं भी करे, लेकिन वैष्णव आचार्यगण इतने दयालु है कि वो हमेशा छोटी सी सेवा के प्रति भी कृतज्ञ रहते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी स्थिति में गुरु के दृष्टिकोण से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से और भगवान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और भगवान, गुरु और शास्त्र का दृष्टिकोण अति दयालु है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो चीज़ हम कर सकते हैं उसी स्थिति से या उसी दृष्टिकोण से हम दूसरों को नापना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है, वो त्रुटि वाला है, लेकिन गुरु साधु शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो परफेक्ट है। उनके दृष्टिकोण से हमको स्थिति को और चीज़ों को देखना चाहिए, और इस प्रकार से देख करके हमको भगवान की कथा में रुचि लेनी चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है भगवान की चर्चा करना, ऐसी स्थिति में हमको ज़्यादा चर्चा छोड़ करके प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना चाहिए, गुरु महाराज का प्रवचन सुनना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव गीत गाने चाहिए। ज़्यादा ये आवश्यक नहीं है कि हमको ज़्यादा भक्तों से बहुत ज़्यादा चर्चा ही करनी है। अगर हम कृष्णमय चर्चा नहीं कर सकते हैं, अगर हम कृष्ण के बारे में वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, अगर हम दूसरे भक्त को भक्ति में प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको समझना चाहिए कि हम ज़्यादा चर्चा करेंगे तो उससे केवल अपराध भावना बढ़ेगी और उससे दूसरे लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। ऐसी भावना से हमको ज़्यादा संग लेना चाहिए गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का, उनका प्रवचन और ग्रंथों के माध्यम से। और बहुत सारा, इतने सारे ग्रंथ हैं। अभी पिछली बार जब श्याम सुंदर प्रभु थे तो पूछा था कि कितने लोगों ने पढ़ा है चेजिंग राइनोज विद द स्वामी पार्ट वन, तो मैं तो कहीं और था, मैंने देखा नहीं कितने लोगों ने, लेकिन वो बोल रहे थे कि बहुत कम लोगों ने पढ़ा। तो प्रभुपाद जी के बारे में इतने ग्रंथ हैं और प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ दिए हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि एक जीवन में आप मेरे सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, हालांकि उनके कई शिष्यों ने पढ़े नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये आपके एक जीवन के लिए, कई जीवनों के लिए मैंने ग्रंथ लिख दिए, आप कई कई जीवन लगेंगे इसको पूरा पढ़ने के लिए, आत्मसात करने के लिए। तो हमारे पास इतना सारा कार्य है, ग्रंथों को पढ़ना, लेक्चरों को सुनना, हरिनाम का जप करना, भगवान की सेवा करना। ज़्यादा चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए, उससे समय बर्बाद होता है और हमारी चेतना खराब होती है, और अगर अपराध हो गया तो भक्तिमय कार्य करते करते प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रख करके भगवान की सेवा में बहुत तत्परता से लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्ण। आइए हम रेवतीपति प्रभु को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।